તારીખ 24/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 373 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 140
ગુજરાતીમાં આ પત્ર હિન્દી મે પત્ર મોરબી કે જસ્ટિસ થે દારસી ભાઈ કુશલચંદ કરકે ઇસકે પર લિખા ગયા હૈ જ્ઞાની કે वचन पर किस प्रकार की निशंकता होनी चाहिए उस पर कोई खास बातें यहाँ पर कृपाल देव ने लिखी है। ज्ञानी के वचन परम फल का कारण है। वो परम फल कब प्राप्त होता है उस विषय पर भी बहुत अच्छी बातें इस पत्र में आई है। राशि भाई ने कुछ पत्र लिखा होगा, उस पत्र के संदर्भ में, पत्र के शुरू शुरू में कुछ सूचनाएं लिखी हैं, बाद में जो लिखा है वो बात थोड़ी विशेष रूप से मुमुक्षु जीव को ध्यान देने योग्य है। मोहमयी से जिसकी अमोहपने स्थिति है ऐसे स्त्री खाली जगह रखी है। खाली जगह तो ग्रंथ बनाने वालों ने रखी होगी, मूल में तो नहीं होगा ऐसा लगता है कि यथा योग्य। मोहमयी से जिसकी अमोहपने से स्थिति है, मोहमयी मैंने बंबई नगरी, उसको कृपालु देव मोहमयी नगरी कहते थे। आज से 100 साल पहले की बात है, 103 साल पहले की बात है, 1948 में ये पत्र लिखा है, अब 2051 चलता है, 103 साल हुए। 100 साल पहले भी मोहमयी नगरी थी, आज तो 100 गुना ये मोह में उमेरा हो गया है, कितना 100 टाइम्स बढ़ गया है। ऐसा फास्ट रिवॉल्यूशन चलता है मोह के विषय में, मोह के जो साधन है पंचेंद्रिय के विषय में विधिविधता है वो उतनी बड़ी है। लिखे हैं मोहमयी नगरी से, किसने लिखा कि अमोहपने जिसकी स्थिति है, 25 साल की युवान उम्र में ये पत्र लिख रहे हैं। और वो अपने जिसकी स्थिति है ऐसा मैं आत्मस्वरूप अपनो ले लो न कृपालु देव को आत्मस्वरूप का यथा योग्य मन के कारण से यह सब है। अवतरण चिन्ह में इतना वाक्य लिखा है कि मन के कारण से ये सब है। ऐसे ऐसा जो अब तक हो चुका निर्णय लिखा यह सामान्य प्रकार से तो यथा तथ्य है। नारसी भाई ने जो अपना निर्णय लिखा था वो सामान्य रूप से ठीक लगा है। मन के कारण से यह सब है यानी मन कल्पना करता है कि ये मुझे अनुकूल है ये मुझे प्रतिकूल है और यही कारण से उनको यह सब उपाधि रहती है जीव को। ऐसा सामान्य अर्थघटन मन के कारण से यह सब है इसका अर्थ होता है। फिर भी कृपालु देव ने अपने विचार भी लिखे हैं कि आपने जो निर्णय लिखा इस विषय में सामान्य प्रकार से यथार्थ मैंने वाजिब लगा है उनको, तथापि मन उसके कारण से और यह सब और उसका निर्णय ऐसे जो चार भाग इस वाक्य के होते हैं एनालिसिस कर दिया है। एक वाक्य का एनालिसिस कर दिया है यह वाक्य इस यह चार भाग इस वाक्य के होते हैं। यह बहुत काल के बोध से जैसा है वैसा समझ में आए ऐसा हम जानते हैं। खुद को कोई बहुत गुढ़ार्थ उसका मालूम हुआ है अपने ज्ञान में कोई गुढ़ार्थ लगता है तो लिखते हैं कि वो चार विभाग करें इसका बोध मैंने इसका सम्यक प्रकार से आत्मा में आत्मकल्याणकारी बोध होवे यह बात तो बहुत काल के बाद समझ में आ सकता है। बहुत काल तक ज्ञानी का बोध सुनने पर यह समझ में आ सकता है। ये चार भाग का जो अर्थघटन है जैसा है वैसा अर्थघटन है ये ज्ञानी का बहुत काल का बोध प्राप्त होने पर समझ में आ सके ऐसी बात है गंभीर बात है ऐसा लिखते हैं। ऐसा हम जानते हैं और जिसको यह समझ में आता है उनको मन वश वर्तता है वर्तता है यह बात निश्चय रूप है। इसका जो परमार्थ है वो समझ में आ जाए कि मन के कारण से सब गड़बड़ है अगर मन उसकी कल्पना करना छोड़ दे तो कोई उपाधि जीव को नहीं है। इस विषय में ज्ञानी से वो बात समझ में आए तो उनका मन है वो मन वश हो जाएगा। सामान्य तौर से मनुष्य का मन अपने वश में नहीं है वो नहीं चाहे ऐसा विचार कर लेता है। एक सेकंड पहले ऐसा निर्णय करे कि मुझे इस व्यक्ति का विचार नहीं करना है पर कुछ सेकंडों में इसका विचार चालू हो जाएगा, क्योंकि मन बस नहीं है, अपने बस में वो मन नहीं वर्तता है, लेकिन मन के कारण से यह सब है। इस विषय में जो निर्णय सही रूप से करने में आया हो तो मन कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा कहते हैं, मन बस में आ जाएगा, मैंने कंट्रोल में आ जाएगा। इतनी गंभीर बात है ये, ऐसा कहते हैं, मनोजय हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होगा कि इस विषय में इसके पहले जो प्रोसेस है, जिस प्रकार का प्रोसेस है, ये सब बात बहुत काल के बोध से प्राप्त होती है, समझ में आती है, इसके पहले समझ में नहीं आती है। खास करके जिस जीव को वेद ज्ञान का प्रयोग चलता हो, उस स्टेज में वो आ चुका हो, वेदना से प्राप्त वैराग्य, वैराग्य से वेदना, वैराग्य से प्राप्त पूर्णता का लक्ष्य, उसके बाद आत्मस्वरूप की अपूर्व भावना, स्वरूप प्राप्ति की अपूर्व भावना, उस भावना के कारण से उत्पन्न अपने परिणामों के सूक्ष्म अवलोकन, और इस अवलोकन की प्रैक्टिस से भेद ज्ञान का प्रयोग जब होता है तब मन वश में आता है, उस स्टेज में आता है। तो इसलिए कहा कि बहुत काल से के बोध के बाद ये समझ में आता है, आत्मा पर ऐसा बोध होता है और बहुत काल तक होता है, उसमें प्रैक्टिस चलती है, तो उसका मन है वो वश में वर्तता है, यह बात निश्चय रूप है, ये बात अवश्य है, निश्चय रूप है, मैंने हमारे अनुभव की वो बात है। तथापि न वर्तता हो तो भी वह आत्मस्वरूप में ही वर्तता है, मन वश नहीं वर्तता है तो आत्मस्वरूप में तो वर्तता ही है। यह मन वश होने का उत्तर ऊपर लिखा है, यह सर्व से मुख्य ऐसा लिखा है, ये मुख्य बात है इसमें। यह जो वाक्य लिखने में आए हैं, यह बहुत प्रकार से विचारवान विचारने योग्य है, ये बहुत प्रकार से विचारने योग्य है। अब इसमें क्या है विस्तार, इसका हो सकता है अच्छा कि जीव कर्म क्यों बांधता है, इसको क्यों कर्म बनता है, कि जहां जहां उसने सुख का निश्चय किया है और जहां जहां उसको सुख लगता है, भाषित होता है, भाषित होता है माने लगता है, वहां उसके मन की गति जाती है, मन के परिणाम की जो गति है वो वहां जाएगी। नहीं चाहे तो भी जाएगी। यानी उस पदार्थ की जीव को जरूरत लगती है, उसकी रुचि होती है और मन के परिणाम दौड़ने लग जाते हैं। इस परिस्थिति में मन बेकाबू होता है, वश में नहीं, काबू में नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये बात ऐसी है कि इससे अनेक प्रकार के कर्म बंधते हैं और ये कर्म के कारण से जन्म मरण का चक्कर जो है वो चालू रहता है। इस कर्म भोगने के लिए बार बार चार गति के आयुष्य कर्म भी बनता है, दूसरे कर्म की लंबी स्थिति हो, आयु कर्म तो एक ही दफे बनता है और जीव का परिभ्रमण चालू रहता है। इसलिए मन वश हो जाए ये जरूरी है, वरना कर्म मन चालू ही रहेगा। तो मन वश कैसे हो सकता है? संसार में तो इसका कोई इलाज नहीं है, संसार में इसका कोई इलाज नहीं है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। एक सेकंड में कहां से कहां जाएगा? लड़का अमेरिका में पढ़ता है, एक सेकंड में वहां चला जाएगा। इतनी तेज गति है इसकी, और न जाने कब कब कैसा विकल्प विचार करता है मन और जीव अधोगति में चला जाता है। तो ऐसे मन के परिणाम को कंट्रोल करना जरूरी है, और वो भी यथार्थ प्रकार से। तो उसके लिए जो प्रोसेस है सारा, ये बात इतनी लंबी है कि भेद ज्ञान के प्रयोग तक कोई पहुंचता है तब ये स्थिति में वो आ सकता है, इसके पहले नहीं आ सकता। भेद ज्ञान के प्रयोग से वो आत्म स्वरूप का भाव भाषण तक पहुंचे, उस स्थिति में मन है वो कंट्रोल में आता है, काबू में आता है, ऐसा स्वयं को मालूम पड़ता है कि अब मेरी चाहना के बिना कहीं और जगह मेरा मन जा सकता नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ का विषय हो गया, ये पुरुषार्थ का स्टेज है, यहां पुरुषार्थ बराबर चलता है जीव का, और बराबर परिणामों के ऊपर वॉच भी आ गया है अवलोकन से, और भेद ज्ञान के प्रयोग में तो काफी रागादि से भिन्नता का जो प्रयोग चलता है उसमें मन इधर उधर जा सकता नहीं है, ऐसी एक स्थिति आती है। इसलिए कृपालु देव ने ये बात लिखी कि यह बात बहुत प्रकार से विचारने योग्य है, क्योंकि फिर वो आत्मस्वरूप में मन लगेगा, मन मैंने उपयोग वो तो प्रयोग में आने से खुद को कंट्रोल आता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कहां कितने स्पीड एडजस्ट करना, ट्रैफिक सामने कब कैसा आएगा, इसका तो कोई नियम नहीं है, ट्रैफिक का कोई नियम है कि कब कैसा ट्रैफिक आएगा और किस टर्न पर कैसा ट्रैफिक आएगा, कोई नहीं है। आपकी गाड़ी चलाने की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस से स्वयं आप उसको कंट्रोल करते हैं। स्पीड को कंट्रोल करने में दो तीन फैक्टर हैं, तो पहले तो हम एक्सीलेटर पर से हमारा वजन उठा लेते हैं, फिर जरूर पड़ती है तो क्लच कर लेते हैं, फिर जरूर पड़ती है तो ब्रेक भी लगा देते हैं। ब्रेक में भी आहिस्ते लगाना, सडनली लगाना, पूरी लगाना, आहिस्ते धीरी लगाना, कई प्रकार का एडजस्टमेंट है। जितनी जरूरत लगे उतना कर लेते हैं और सहज रूप से करते हैं। ये डिसीशन, इसका जो निर्णय है, डिसीशन है, बहुत फास्ट लेना पड़ता है। सेकंडों में ये डिसीशन हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। प्रैक्टिस है तो सहज ले सकते हैं। दूसरे से बात करते करते बगल में बैठे वाले से बात भी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, बात क्या करेंगे है, नाश्ता भी करेंगे, कोई सिगरेट पीगा पियेंगे, कोई खाना खाएंगे, टेप रिकॉर्ड बजाएंगे तो गाना भी सुनेंगे। हाँ, कई प्रकार के और भी क्रियाएं चलती है, सेहत चलती है। इतना कंट्रोल आता है गाड़ी चलाने में, उतना कंट्रोल है हमारा। वैसे मन की गाड़ी भी चलाने में कंट्रोल आता है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। तो स्टेज प्रैक्टिस का है। वेद ज्ञान की प्रैक्टिस जब चलती है, इतना स्टेज के बाद तब यह जीव मोक्ष मार्ग के अति निकट आ जाता है, अति निकट होता है, क्योंकि इसका मन आत्मा के विषय में भरता है। इसके पहले एक बात और भी है कि जिसको सत्पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम होता है, अनन्य भक्ति होती है, प्रेम रूप भक्ति होती है, पराभक्ति है, ऐक्य भाव रूप भक्ति चलती है, तब इसका मन कहीं नहीं जाएगा। ये भी एक स्टेज है इसका, जो वेद ज्ञान से पहले भी आता है। ऐसे दो प्रकार की योग्यता में वो बात बहुत प्रकार से विचारने योग्य है। ये भी अनुभव का विषय है, वो भी अनुभव का विषय है। दोनों अनुभव के विषय होते हैं, विचार के विषय नहीं है, अनुभव करने योग्य है।
चरण में मन में स्थापित करना,
हाँ, पहले मन में स्थापित करना कठिन लगेगा, लेकिन स्थापित कर सकते हैं। बस जो सर्वसमर्पण भाव होता है, सर्व भाव अर्पण करके वर्त्यो जा, एक सत्पुरुष को खोज और सर्व भाव अर्पण करके। सर्व भाव में क्या है, मन के सर्व भाव अर्पण कर दिए, मन और कहीं जगह जाएगा नहीं। मन को फिर कहीं रस नहीं है, कहीं और जगह जाने का रस नहीं है तो नहीं जाएगा। एक अपना परमात्मा मिल गया उसको, प्रत्यक्ष परमात्मा मिल गया, प्रकट परमात्मा मिल गया, तो और जगह नहीं जाएगा। ये बात मन के विषय में लिखी है। महात्मा का देह दो कारण से लेकर के विद्यमान पणे वर्तता है। महात्मा मैंने ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष का जो शरीर है, उस शरीर की जो क्रियाएं हैं, और उसका जो वर्तन होता है, परिणमन होता है, उसमें दो कारण हैं। एक तो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए, पूर्व के प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर की उपस्थिति या क्रिया है, और दूसरा दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। एक अपना प्रारब्ध भोगने के लिए और एक दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। तथापि इन दोनों में तो उदासपने से उदय आई हुई वर्तना से वर्तते हैं, ऐसा जानते हैं। दोनों में उदासीनता है, कोई अपेक्षा नहीं है। उदय आया, बोल दिया। जैसे आप पुरस्कार दिखा ना 449 में, आज कोई ऐसा ही उदय आया तो आपको ये 8वां पुरस्कार लिख रहे हैं। अगर उदय भाव नहीं चला तो आधा भी लिखा रह जाता है, पूरा पत्र भी नहीं चलता है, इतना उदासीन होते हैं। वो भी दूसरे जीवों के कल्याण के लिए तो चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, उसमें कोई अपना तो कारण नहीं था, फिर भी उदासीनता आ जाती है तो पत्र भी नहीं लिखते थे या अधूरा लिख के रह जाता थे। अब जो लिखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। ध्यान जप तप क्रिया मात्र, कोई भी धार्मिक क्रिया, ध्यान जप तप क्रिया मात्र, इस सर्व के बारे में, सर्व के विषय में, सर्व के लिए, गुजराती में लिखो ये सर्व थकी, सर्व के लिए हमने बताए हुए दर्शाए हुए कोई वाक्य, धार्मिक विषय में हमने कोई भी बात कही हो, लिखी हो, यदि परम फल का कारण लगता हो, धारता हो, मैंने आपके अंदाज में आता हो कि मेरे लिए ये मेरा परम फल आत्मकल्याण का कारण है, ऐसा आपको लगता हो, निश्चयपणे ऐसी धारणा हो आपकी, आपकी ऐसी धारणा हो, निश्चयपणे माने वाक्य ही ऐसी धारणा हो कि नहीं ये मेरे लिए परम फल का कारण है, परम फल का कारण है, ये ब्रह्म वाक्य है और मेरे लिए तो मेरे आत्मकल्याण का वाक्य ही कारण है, और पीछे से ऐसी धारणा करने के बाद भी पीछे से बुद्धि, आपकी बुद्धि में कोई लोभ संज्ञा न आए कि ऐसे विषय में लोगों के विचार तो ऐसे नहीं है, ज्ञानी की बात ऐसी अवश्य है लेकिन लोग तो ऐसे नहीं मानते हैं, इसका क्या करेंगे, ऐसा कोई लोक संज्ञा के लोग की मुख्यता वाला विचार आ जाए तो, और शास्त्र संज्ञा पर न जती हो तो आपकी बुद्धि, या आपको ये विकल्प आ जाएगा कि ज्ञानी ने ये बात कहा लेकिन शास्त्र में तो ऐसी बात कहीं नहीं दिखी हमने, ये आपके शास्त्र संज्ञा है, ये शब्द कहीं और जगह सुनने में नहीं मिलेगा आपको कृपालु देव के पत्र के अलावा, शास्त्र संज्ञा किसको कहें, शास्त्र संज्ञा का मतलब क्या, ये पत्र जो ऐसा होता होता है ना उसमें अर्थघटन निकालना बहुत तकलीफ वाली बात होती है। शास्त्र संज्ञा मैंने जिसने शास्त्र पढ़े हैं उनसे कोई दूसरी ही बात ज्ञानी कर रहे हैं, जो शास्त्र में उसको पढ़ाई में समझ कभी पढ़ने में नहीं आई हो, सुनने में नहीं आई हो, तो वैसे जीव को कभी ऐसा विकल्प आता है कि ज्ञानी ने तो कहा लेकिन शास्त्र में तो ऐसी कोई बात नहीं आई कभी, ऐसा विकल्प का उठना उसका नाम शास्त्र संज्ञा है। ये भी करने लायक नहीं है, तुमको कितना विश्वास है बोलो, और जगह तो बोलेंगे कि हमने जो कहा है वो आगम में शास्त्र में आपको मिल जाएगा, शायद शास्त्र में नहीं मिले तो उसको आगम ही जानना, हम ये बात करते थे भावी तीर्थंकर की प्रतिष्ठा का जब बात आई थी, गुरुदेव ने ऐसा बोला है पर आम लोग यह कह रहे हैं कि शास्त्र में ऐसी बात नहीं मिलती है, तो क्या फिर गुरुदेव ने बोलने के बाद शास्त्र की साक्षी की आपको आवश्यकता लगती है? ये हमारा प्रश्न है। तो ये शास्त्र संज्ञा है, जैसे लोक संज्ञा है वैसे ये शास्त्र संज्ञा है। शास्त्र संज्ञा पर आपकी बुद्धि नहीं जाती हो तो, अगर जाए तो, फिर भी जाए तो, ये भ्रांति के कारण से गई है ऐसी आपकी धारणा हो तो, और यह वाक्य को बहुत प्रकार से धीरे से ये सब है, तो इसके विषय में हम कहेंगे शायद शास्त्र में वो बात हमको मिलेगी नहीं, तो शास्त्र संज्ञा हो जाएगी शायद, पर शास्त्र संज्ञा हो जाए तो भी ये मेरी भ्रांति है ऐसा आपको अभी से कोई निश्चय हो तो, और इस वाक्य को बहुत प्रकार की धीरज हमारी लिखने की इच्छा होती है, वरना इस गंभीर विषय को हम लिखेंगे नहीं। हमारा प्रत्युत्तर इस विषय में, हमारा प्रत्युत्तर हमारे लिखने के पहले हमारी इतनी कंडीशन है एक ही पत्र ऐसा है कि जिसमें कृपालु देव ने अपनी बात लिखने के लिए इतनी कंडीशन की हो, और वो भी दासी भाई जैसे जस्टिस के लिए, उम्र में तो बड़े थे ही वो, तो बहुत इनके लड़के जैसे होंगे 25 साल के, इतने उम्र के बड़े जज थे समाज में। क्या है दूसरे सब लोगों में, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी डिग्निटी वाला आदमी हो, जो जज है ना वो किसी के साथ मिलते जुलते नहीं है, वो हमेशा अलग ही रहते हैं। पर इस कारण से हम जज हैं ऐसा उसको मान भी रहता है कि हम तो जस्टिस हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पर भी केस चलता है तो वो जस्टिस के सामने चलता है, राष्ट्रपति पर अगर केस चलता है तो वो भी जस्टिस के सामने चलता है, तो इनका जो स्थान है कोई दूसरा है, अलग प्रकार का है। गुरुपाल जी ने इसकी परीक्षा किया था, गर्मी के दिनों में दोपहर को मोरबी के बाजार के बीच से वो निकले, तो जस्टिस से वो छाता लेकर के, धूप था, कड़ा धूप था, तेज गर्मी थी, तो कृपालु देव के सिर पे वो छाता लेकर के बाजार में से निकले। लोग देखने लगे, अरे ये जज साहब है, इस लड़के के सिर पे छाता रख करके चल रहे हैं, ये क्या बात है, चर्चा करने लगे, देखने लगे, और जज साहब को मालूम भी हुआ कि लोग मेरी चर्चा करते हैं, लेकिन वो उतने समर्पित थे, उतना बहुमान था कि सारे बस्ती के बीच में भी अपना मान खो करके वो सेवा करने लगे। उनकी परीक्षा किया था, फिर भी इतनी कंडीशन किया है, इतनी तैयारी है, तो इस वाक्य का अर्थ हमारे लिखने की इच्छा है। इससे भी विशेष रूप से इतनी कंडीशन किया है तो भी हमको संतोष नहीं है, इससे भी विशेष रूप से निश्चय को, निश्चय में धारणा करने के लिखना अगत्य जैसा लगता है, और भी इसका जो निर्णय करना है, निश्चय करना है इस विषय में आपको जो हमको लिखना है इसमें और भी अगत्य लिखने की हमको लगती है, तथापि चित्त अवकाश रूप से वर्तता नहीं है, हमारा उपयोग नहीं चलता आगे। अभिप्राय में और भी बातें हैं, और भी इसकी अगत्यता आपको समझाएं लिखे फिर उत्तर देंगे, लेकिन वो अविद्यता के विषय में हमारा उपयोग नहीं चलता है। इसलिए जो जितना लिखा है वो प्रबल रूप से बलवान रूप से मानना, जितना भी हमने लिखा है उसका बहुत वजन है ऐसा मानना, लाइटली मत लेना, हल्के रूप में ये बात मत ले लेना, ऐसा कहते हैं। तो ये जो बातें लिखी है उसमें ज्ञानी पुरुष के वचन में कितनी गंभीरता होती है और कितनी गंभीरता से आज्ञाकारिता से उसको उठाना चाहिए, इसका वजन कितना होना चाहिए, इसका बहुमान कितना होना चाहिए, तब ये परम फल का कारण होता है, आत्म कल्याण का कारण ये बनता है। इसका फल बहुत बड़ा है, जन्म मरण छूट जाएगा, चारों गति के दुख मिट जाएंगे, ऐसा बहुत बड़ा फल है इसका। तो वो दिखाने के लिए यहाँ एक सैंपल मिल गया है हम लोगों को कि देखो कितनी बात होनी चाहिए इसमें। सर्व प्रकार से उपाधि योग तो निवृत्त करने योग्य है, सभी प्रकार से उपाधि योग तो निवृत्त करने योग्य है, ऐसे तो उपाधि योग मैंने व्यवसाय जिसको जो भी व्यवसाय है वो व्यवसाय की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के कारण से जीव को अनेक प्रकार के कर्म भी बंधते हैं और तीव्र रस से जीव ये प्रवृत्ति करता है, वो भी अधोगति में जाने का ही कारण है। तथापि वहां भी एक विकल्प और भी है, तथापि यदि वह उपाधि योग सत्संग आदि के लिए ही इच्छने में इच्छा करने में आता हो और फिर चित्त स्थिति संभवपणे से रहती हो तो यह उपाधि योग में प्रवर्तना भी श्रेयस्कर है। अब क्या है इसमें, क्या लिखते हैं कि कभी किसी के संयोगिक परिस्थिति ऐसी हो कि व्यवसाय आदि करे बिना चले नहीं, क्योंकि तो आज आप उपजीवन का आजीविका का वो साधन है कारण है, अगर वो नहीं करे तो दीनता में आ जाएगा, भीख मांगना पड़ेगा, जिसके परिणाम दीन है, दीनता के परिणाम वालों का इस मार्ग में काम नहीं होता कभी, जो हाथ फैलाता है कि मैं ये दो वो दो उसको दीनता आ जाती है, तो उसका पुरुषार्थ जो है इस अपेक्षा वृत्ति के कारण से उपेक्षा में आ सकेगा नहीं, क्योंकि उसमें अभिप्राय की भूल खास प्रकार से रहती है। इसलिए कहते हैं कि अगर ये उपाधि योग भी सत्संग आदि के कारण से चाह बिछने में आता हो कि इतनी उपाधि कर लेंगे तो फिर हम उसको सत्संग करने में या सत्संग के दौरान हमारा पुरुषार्थ बढ़ाने में कोई बाधा नहीं आएगी, तो व्यवसाय करने के पीछे भी आत्मकल्याण का हेतु हो, सत्संग आदि माने आत्मकल्याण का हेतु हो तो, और उस उपाधि कार्य में व्यवसाय में भी चित्त स्थिति मैंने अपने परिणाम बिगड़ते न हो तो, ये भी एक शर्त है, क्योंकि करना पड़ता है, करने का रस नहीं है, करना पड़ता है, दो बात में बहुत अंतर है। जिसको उत्साह से, रस से, महत्वाकांक्षा से, आशा से, अपेक्षा से ये उपाधि कार्य करना है उसकी बात अलग है, और जिसको करना पड़ता है नहीं चाहते हुए भी उसकी बात अलग है, उसको रस नहीं आएगा। चलो ये मजदूरी किए बिना अपना सत्संग में बाधा आ जाएगी, अपने आत्मकल्याण में आगे बढ़ने में थोड़ी और तकलीफ बढ़ेगी। तो वो कठिनाई को छुड़ाने के लिए अगर उपाधि युग में भी वर्तन करना पड़े, प्रवर्तना पड़े, तो वो भी श्रेयस्कर है, तो लाभ का कारण बनेगा। उतना एक विकल्प भी इसमें है, वरना तो इस व्यवसाय आदि उपाधि को छोड़ना ही श्रेयस्कर है, तो निवृत्त होने योग्य ही है, फिर भी इतना विकल्प है इसमें। अप्रतिबद्ध प्रणाम, प्रतिबद्ध रूप प्रणाम नहीं है हमारा, कोई प्रतिबद्ध नहीं, प्रतिबद्ध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं होता, हम तो मुक्त जैसे वर्तते हैं, सभी प्रकार के प्रतिबंध से हम मुक्त वर्तते हैं।
व्यवसाय के कारण से अगर परिणाम खराब होते हो,
हाँ,
व्यवसाय से अगर परिणाम खराब होते हैं तो व्यवसाय नहीं करके भीख मांगना ही अच्छा है।
हाँ ठीक है, नहीं व्यवसाय से, व्यवसाय के कारण से परिणाम नहीं बिगड़ते, हमारा उसमें लाभ नुकसान का अभिप्राय है तो परिणाम बिगड़ता है। प्रवृत्ति कोई परिणाम नहीं बिगाड़ती, अन्य पदार्थ से हमारा परिणाम बिगड़ता है वो वस्तु स्थिति नहीं है, लेकिन हमारा इस विषय में जो निश्चय है, मिसकॉन्सेप्ट है, पर हमारे आशा अपेक्षा जो कुछ भी है इसी कारण से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, वो कारण है। वो भी एक दिनता ही है और क्या है, उसमें भी अपेक्षा वृत्ति जो है वो भी एक दिनता है और क्या है। तो इस प्रकार का व्यवसाय के विषय में भी कृपा गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। यहाँ तक रखें, थोड़ा समय तो है, एक भक्ति का पद ले लें, हसमुख भाई भक्ति कराएं।
प्रभु के प्रभु शो प्रभु